ओम शांति। आज हम सब के बीच में बाबा के इस बेहद यज्ञ का अमूल्य हीरा बैठे हैं, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की पालना ली है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की। आपने एमटेक की पढ़ाई के बाद 1967 में ओएनजीसी में अपनी लौकिक जॉब आरंभ की। 28 साल तक आपने लौकिक जॉब किया, सुपरिंटेंडिंग जियोफिस्ट पद से वीआरएस लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप समर्पित हुए। 1962 में आप बाबा के इस बेहद यज्ञ के ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आपने आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हैं। आपने कई अभियान, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम, प्रदर्शनियां आदि का नेतृत्व किया है और देश विदेश में अनेक आत्माओं तक बाबा का संदेश पहुंचाया है। आपने कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। आप एक अनुभवी ट्रेनर हैं। आपने कम से कम 10,000 जितने प्रवचनों से अनेकानेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। ऐसे हमारे मोहन सिंघल भाई जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आप सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच में बहुत अच्छा विषय लेकर के आप पधारे हैं, बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिसफुल लाइफ। भाई जी के लिए कहेंगे, न स्वार्थ न अभिमान न दिखावे की चाल। आदरणीय मोहन भाई जी, ज्ञान योग और सेवा की मिसाल। कहते हैं, जिंदगी को केवल जीना ही नहीं बल्कि उसे संतुलन, आशीर्वाद और आनंद से भरना ही सच्ची सफलता है। आज हम सब इसी बात को समझेंगे। भाई जी आज हमें अपनी प्रेरणादायी अनुभव युक्त क्लास से अपने विचारों को हम कैसे शुद्ध रखें, अपने जीवन को कैसे संतुलित बनाएं और निरंतर परम आनंद का अनुभव कैसे करें, ये बातें स्पष्ट करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी भाई बहनों को नम्र अनुरोध करती हूँ कि जो बहुत दूर दूर बैठे हैं वो यहाँ आगे सोफे पे आके बैठ जाए तो आपको भी अच्छा लगेगा। जो भी नीचे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, सभी माताओं को भी रिक्वेस्ट है कि आगे यहाँ सोफे पे अपना स्थान ग्रहण कर ले। जो भी नीचे माताएं बैठे हैं, प्लीज आप सब भी आगे आके बैठ सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। एक बार हम उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा यज्ञ में आदि में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और यज्ञवत्स किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे फिर निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। बाबा के साथ तो सब पहले ओम ध्वनि किया करते थे और इसीलिए संस्था को लोग कहने लगे ओम मंडली। शुरू में इसका नाम ऐसा था लेकिन फिर बाद में बदल के ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ। यह तो सब आप जानते ही हैं। आज के विषय में बाबा ने जो मुरली की शुरुआत की, आज की जो मुरली हम सब ने सुनी, तो पहली लाइन में ही बाबा ने आज के विषय को काफी स्पष्ट कर दिया। हमेशा बाबा याद प्यार इकट्ठा ही बोलते हैं, आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, याद करो और प्यार करो, यानी याद और प्यार का बैलेंस। आज के टॉपिक में भी बैलेंस शब्द है ना, पहला बैलेंस, ब्लेसिंग्स एंड ब्लिसफुल लाइफ। तो बैलेंस किस किस चीज का चाहिए जीवन में, क्योंकि ये ही एक शब्द है जिसमें जीवन की सफलता समाई हुई है। हम सब ज्ञान में अलग अलग समय पर आए और जब ज्ञान में आए तो एक तरफ तो हमारी पुराना जीवन था जो लौकिक जीवन, वो तो सब जानते ही हैं, लेकिन जब ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के बाद जीवन परिवर्तित हो गया तो वो आध्यात्मिक जीवन और लौकिक जीवन, उन दोनों में कई बार बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। जब आते हैं बहुत नशा एकदम होता है, खुशी होती है क्योंकि प्राप्ति हुई, और बाबा का भी बहुत विशेष बल होता है क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप का ध्यान होता है, भाई थोड़ा चलना सीखा है तो गिर ना जाए, तो इसीलिए पकड़ के भी चलाते हैं। तो बाबा भी जब हम आध्यात्मिक रीति से छोटे बच्चे होते हैं तो बाबा की भी विशेष बल और शक्ति रहती है, जिससे कि शुरू में आते ही एकदम हर चीज में परिवर्तन परिवर्तन नजर आता है। लेकिन सफलता के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी लौकिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ आध्यात्मिक जीवन इसका बैलेंस बना के रखे, नहीं तो कई बार लौकिक वाला पार्ट शुरू में तो एक ही होता है, लौकिक लाइफ तो कोई बैलेंस की बात ही नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन जब ये दूसरा जीवन हमारा आध्यात्मिक जीवन, इसमें आंतरिक खुशी शांति आनंद पवित्रता प्रेम शक्ति का एहसास होता है, तो ये लौकिक और अलौकिक लाइफ का बैलेंस, अब वो बनाने में कठिनाई होती है। और कई बार इसीलिए परिवार से या ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ से या उधर से कंप्लेंट आती है, भाई ये तो घर बार का सब जैसे भूल गए, उधर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं आध्यात्मिक में, या फिर आध्यात्मिक में हम ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि लौकिक में इतने उलझे रहते हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो वो बैलेंस अगर जितना रहेगा तो हम जीवन में आध्यात्मिक लाइफ में भी सफलता प्राप्त करते रहेंगे। तो आज हम ये ही देखते हैं कि जीवन में कैसे दोनों का बैलेंस बना के रखें, क्योंकि प्रकृति ने हम जो लोगों को जो मनुष्य को बनाया है तो शरीर के बैलेंस के लिए भी दो टांगे दी हैं। दोनों टांगे होती हैं तो बैलेंस से हम चलते हैं दौड़ते हैं कुछ भी करते हैं। इसी तरह मानसिक रीति से भी बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज होती है दिल और एक होता है दिमाग। तो दिल और दिमाग का बैलेंस ये आवश्यक है, नहीं तो दिल कई बार ऐसे लौकिक चीजों की तरफ जाता है, खींच होती है, पुराने संस्कार होते हैं, तो वो दिल उधर ले जाता है, चलो ये खा लें बाहर, ये पी लें, ये पिक्चर देख लें, ऐसा कर लें, जो लौकिक जीवन में लोग करते आए हैं। लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं, अब मैं ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी हूँ, मेरा आध्यात्मिक जीवन है, भगवान मुझे मिला है, इस जीवन में मुझे परिवर्तित होके चलना है, यज्ञ की मर्यादा अनुसार चलना है। तो इसीलिए एक है, और इसीलिए प्रकृति ने भी क्या किया हुआ है मनुष्य को ना, ये जो ब्रेन भी दिया है, ये ब्रेन के दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट, बाया और दाया, और बाया भाग जो है वो ये लौकिक चीजों को सब डील करता है, जो डे टू डे जीवन की चीज होते हैं, खान पान, रहन सहन, विज्ञान है, और साथ ही साथ जीवन की सभी आवश्यकताएं, धन कमाना है, प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के सारी चीज। और दाया भाग जो है ब्रेन का, वो ज्यादातर आध्यात्मिक में उन गुणों को डील करता है जो आत्मा के साथ गुण है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये इन सब से कनेक्टेड चीजें। और जहां जब दोनों का बैलेंस होता है तो जीवन बड़ा सुखदाई रहता है। तो इसीलिए बैलेंस रखा है, तो कैसे लौकिक में तो बचपन से जिस दिन से पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं तो दो टांगों पर चलना बैलेंस है, उसमें सीख जाते हैं और जिंदगी भर चलते ही रहते हैं, तो उसमें तो कुछ परिवर्तन करना नहीं है। लेकिन लेफ्ट एंड राइट, बायां और दायां दिमाग का, इसका बैलेंस रख के चलना है, तब हम सच्चे अर्थों में, बाबा ने कहा योगी बनो, योग करो, प्यार करो बाबा से, क्योंकि योगी जो है ना, योग में विचार सागर मंथन भी होता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, सूक्ष्म वतन, परम धाम, उसमें सब कुछ कुछ दिमाग से भी कनेक्टेड होता है, लेकिन प्यार जो है सब्जेक्ट, वो दिल का सब्जेक्ट है। इसीलिए बाबा भी कई बार कहता है, बांधेली माताएं होती हैं, बहुत बंधन में भी होती हैं, बाबा तक उनके प्यार पहुंचता है, क्यों, बहुत दिल से याद करती हैं, तो वो तड़प से याद करती हैं, बाबा को पहुंचता है। तो दोनों का बैलेंस, और जो हम जिसे कोई बंधन नहीं होता ज्यादातर करके, वो बस याद जरूर करते हैं, लेकिन उतना जिगरी याद नहीं करते जितना कोई बांधेली माता है, या कोई भी बांधेला होता है, कोई भी, तो वो करते हैं। तो इसीलिए, लेकिन राजयोगी, हाँ, योग भी करना है हमें, राजयोगी बनना है, और राजा, राजा माने सबसे पहले तो इन कर्मेंद्रियों के राजा, ये आंख, नाक, कान, हाथ, मुंह, ये जितने हैं, इन कर्मेंद्रियों के राजा बन के हमें चलना है। तो राजयोगी, तब बाबा ने कहा जितना जितना योग भी होगा, प्यार भी होगा बाबा से, तो जीवन में खुशी रहेगी, जो आज बाबा की मुरली का सार भी था। तो पहले पहले हम ये देखते हैं किस किस चीज का बैलेंस रखने से। अब योग करते हैं तो बस योग में जहाँ बायां पार्ट होता है, ये तो लौकिक कार्य व्यवहार में कुशलता का प्रतीक है, तो फिर अलर्ट, जागरूक, और जागरूक के साथ साथ जो दायां पार्ट है आध्यात्मिक को जो डील करता है, वो रिलैक्स। तो योग भी करें हम, हमारे हर कार्य में अगर अलर्टनेस भी होगी, जागरूकता भी होगी और रिलैक्स भी होगा, तो हम जीवन में सफल होते चले जाएंगे। तो अलर्ट एंड रिलैक्स ये आवश्यक है। आज अधिकतर मनुष्य ये भी बोलते हैं क्या करें, टाइम नहीं है, बिजी है, बहुत बिजी है। लेकिन जो योगी होगा, राजयोगी होगा, वो बिजी कार्य व्यवहार भी करेगा, जो भी प्रवृत्ति के हैं, लौकिक हैं, बिजी के साथ साथ वो इजी भी रहेगा। दायां पार्ट जो है वो इजी, हल्कापन का प्रतीक है। कार्य में ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मेरे से बात नहीं करो, नहीं। बिजी के साथ साथ इजी, हल्कापन भी जीवन में रहेगा। तो अलर्ट के साथ साथ रिलैक्स भी रहे, बिजी के साथ साथ इजी भी रहे। तीसरी बात, भाई जब बिजी रहेगा तो केयरफुल भी रहना पड़ेगा, कोई कार्य व्यवहार में कुछ एक्सीडेंटल बात ना हो जाए, तो केयरफुल भी रहेगा। और केयरफुल का मतलब एकदम वो नहीं हो जाए, बिल्कुल सीरियस, केयरफुल रहे लेकिन चीयरफुल भी रहे। केयरफुल बायां पार्ट डील करता है और दायां पार्ट इनका चीयरफुल। चीयरफुल माने खुश मिजाज, कार्य भी करता रहे, बिजी भी रहेगा लेकिन मिजाज एकदम खुशनुमा, जो बाबा बोलता है ना, खुशी आपके चलन और चेहरे से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो। चौथा है कि हम वर्क में हैं, डिटैच्ड भी रहें और इन्वॉल्व भी रहें। वर्क है, इन्वॉल्व तो होना ही पड़ेगा, कोई भी कर्व है तो इन्वॉल्व भी रहें लेकिन डिटैच भी रहें। मानसिक रीति से डिटैच कर्म करें, जितना हम डिटैच रहेंगे उतना उतना कर्म का प्रभाव, रिवर्स प्रभाव ने, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोलते हैं ना, कर्मों में कुशलता आती है। तो वो कर्मों में कुशलता कब आएगी, जब डिटैच के साथ साथ इन्वॉल्व और इन्वॉल्व के साथ साथ डिटैच, ये मानसिक रीति से वो हम उसके अंदर थोड़ा डिटैचमेंट का भाव भी रखे। और इसके साथ साथ क्या है, जीवन के अंदर हमारे जब स्पिरिचुअल वैल्यूज आती हैं, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, तो ये नहीं कि मटेरियल वैल्यूज का एकदम त्याग कर देते हैं, लेकिन मटेरियल वैल्यूज को स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा बेंट कर देते हैं। मानो मेरे पास कार है, ठीक है, कार में हम जो है पहले लौकिक जीवन में भाई घूमना फिरना वो ज्यादा होता है, लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ भी शुरू हुई तो मटेरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि उस कार का यूटिलाइजेशन हम गॉडली सर्विस में करें, बाबा की सर्विस में करें, दूसरों को संदेश देने में भी करें, ये सब भी रहे। तो दोनों लाइफ का बैलेंस भी रहे साथ साथ। और क्या होना चाहिए, वैल्यूज मतलब एकांत का भी बैलेंस रहे, किसके साथ, संगठन के साथ। संगठन है, संगठन में कहते हैं चरित्र का विकास होता है, क्योंकि जब संगठन होगा तो ऐसे कोई गलत कार्य नहीं करेंगे कि कोई चरित्र के ऊपर उंगली उठाए, सब देख रहे हैं। तो संगठन और एकांत, एकांत में बुद्धि का विकास होता है, क्योंकि एकांत में बैठेंगे, मनन चिंतन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अव्यक्त मुरली करेंगे, ये सब। तो एकांत भी हमारे जीवन में होना चाहिए, पूरे दिन भर बहुत बिजी रहें फिर भी कुछ 10-15-20 मिनट आधा घंटा एकांत जरूर अपने लिए निकालना चाहिए। एकांत और संगठन में तो जब सेवा होती है तो हमारे गुणों का भी वो हो जाता है टेस्ट, कि कितने गुण इन्होंने अपने जीवन में धारण किए हैं। गंभीरता और रमणीकता का भी बैलेंस, ये बहुत आवश्यक है। कहाँ रमणीक होना है, कहाँ हमारे जगदीश भाई जी थे बहुत वरिष्ठतम भाई, जिन्होंने हमारा 200 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, हमारे यज्ञ की किताबें ज्यादातर उनकी हैं। गंभीर प्रकृति भी थे लेकिन रमणीकता में भी जब आते थे बहुत अच्छी अच्छी रमणीकता की बातें करते थे। तो गंभीरता और रमणीकता का भी ये बैलेंस हो, कहाँ गंभीर होना है कहाँ रमणीक होना है। ज्ञानी हो गए तो इसका मतलब हंसना भी नहीं हो या हंसने अट्टहास करने की बजाय जैसे दैवी मुस्कुराहट, देवताओं के मुख पर मुस्कुराहट होती है तो वो मुस्कुराहट चेहरे से झलकती है, तो सदैव ही वो मुस्कुराहट का भी भाव हो एक ये जीवन के अंदर होता है। और इसके साथ साथ क्या चाहिए कि हमारे पास जीवन की सब आवश्यकताएं तो आते रहेंगे, धन धान्य सब कुछ, लेकिन उसके साथ साथ विनम्रता भी होना चाहिए। सब है जीवन की आवश्यकताएं, लेकिन अगर विनम्रता नहीं है, विद्या के साथ साथ अहंकार ना हो, धन के साथ साथ विनम्रता हो, यानी ये अपोजिट गुण है तभी तो वैल्यू है। अगर किसी पे धन बहुत है ठीक है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन गुणों का अभाव है, अहंकार है, क्रोधी है, वो सब बात है, तो उस धन का भी कोई उतना जीवन में मूल्य नहीं है। भले उसके सामने लोग झुकें लेकिन दिल से नहीं झुकेंगे, पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे। तो हमें चाहिए इस प्रकार की बातें कि पूरा जीवन के अंदर ऐसा रहे कि जीवन हमारा ऐसा दैवी जीवन रहे, लेकिन आज के कार्य के अनुरूप, समाज के अनुरूप जीवन के अंदर वो आवश्यकताएं भी हम पूरी करते चले। तो इसीलिए ये दोनों चीजें ना, ये बहुत 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 आवश्यक है। तो बैलेंस में आपने देखा कि ये बैलेंस अधिकतर करके जीवन के अंदर रहेंगे जितना, तो ये कैसे रहेंगे, जब हमारा ज्ञान और योग का बैलेंस रहेगा। जब हम आते हैं ज्ञान में तो बस ज्यादातर करके सेवा में भी बिजी हो जाते हैं, चलो आज यहाँ प्रदर्शनी हो रही है, बहन जी भी बोलेंगी भाई यहाँ ये कार्य है करना है, हम लोग भी खुशी खुशी कर लेते हैं, लेकिन किस कॉस्ट पर करते हैं। कई बार सेवा करते करते चलो थक गए, अगले दिन अमृत वेले नहीं उठ पाएंगे, मुरली मिस हो जाएगी। तो असली बात यह है कि ज्ञान योग सेवा धारणा, तो धारणा एक रेगुलर सब्जेक्ट है, ज्ञान मुरली भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सेक्रीफाइस योग का हो जाता है। योग में आएंगे बैठेंगे भी लेकिन वही सेवा की बात घूमती रहेंगी, यहाँ ये जाना है, इसको ये करना है, तो वो फिर योग तो हुआ ही नहीं, विकर्म तो दग्ध होंगे नहीं। तो जीवन के अंदर जो सफलता का महामंत्र है वो है बैलेंस। इस बैलेंस से क्या होगा, जितना जितना बैलेंस होगा ना, उतना उतना जब ज्ञान और योग, एक तरफ विकर्म भस्म होते जाएंगे योग से, हल्कापन आता जाएगा, दूसरी तरफ ज्ञान, मुरली भी पढ़ेंगे और पुरानी भी अव्यक्त मार मुरलियां हैं और ज्ञान रेगुलर आएंगे, मुरली बाबा की सुनेंगे, रोज मुरली के कुछ पॉइंट नोट करेंगे, सारा दिन दो तीन चार पॉइंट पर मंथन भी चलेगा। उससे क्या होगा, जितना जैसे शरीर में ना खुराक खाना तो खा लिया ताकतवर, लेकिन अगर हजम करने की शक्ति नहीं है तो वो खाना बेकार है, कमजोर के कमजोर ही रहेंगे, क्योंकि हजम ही नहीं हुआ, उसका खून और शक्ति नहीं बनी। तो जैसे हजम शक्ति वो आवश्यक है शरीर के लिए, ऐसे ही बुद्धि के लिए मनन शक्ति आवश्यक है। तो थोड़ा सा मनन का समय अपने लिए जरूर जरूर निकालना चाहिए। भले शुरू में बैठेंगे और उस मनन की विधि क्या है बड़ा सहज बताई है, क्योंकि शुरू शुरू में एकदम विचार सागर मंथन नहीं चलेगा। तो क्या करो, जो चित्र होते हैं, जब हम ज्ञान में आते हैं तो घर में चित्र भी लगा लेते हैं, विशेष करके ये चार मुख्य चित्र तो हर एक के घर में होने चाहिए, झाड़ कल्प वृक्ष का, त्रिमूर्ति सीढ़ी, उसके साथ गोला भी है वो चित्र, और लक्ष्मी नारायण। ये चार चित्र जो हैं ये हर एक के घर में तो जरूर होने चाहिए। तो मनन शक्ति कैसे बढ़ाएंगे, किसी भी चित्र के सामने जाके बैठ जाओ। किसी दिन मानो आज आप कल्प वृक्ष के सामने बैठ गए, तो वृक्ष के रूप में है तो उसके नीचे ब्रह्मा बाबा और ममा और आठ जो अष्टमाला के मणके, माला के मणके हैं आठ, उनके भी कुछ चित्र वगैरह बनाए हैं। तो बस वहाँ उन्हें चित्र को देखें, और जैसे प्रदर्शनी में किसी को समझाते हैं ना, ऐसे अपने को समझाएं, ओहो ये कल्प वृक्ष सृष्टि उल्टे वृक्ष के समान है, और ये वृक्ष जो है बाबा और मम्मा योग कर रहे हैं, और बाबा मम्मा के साथ अपने को भी विजुअलाइज करो कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरा भी चित्र है और मैं सृष्टि को शक्ति दे रहा हूँ। बिल्कुल। और वो बीच में कई जगह तो मैंने देखा हमारे भाई बहन अपना चित्र काट के भी उसमें लगा देते हैं नशा बढ़ाने के लिए, मैं भी अष्ट रत्नों में एक हूँ। और देखेंगे जरा अपने को, ओहो बाबा ने कितना महान बनाया है, ये इतनी बड़ी सृष्टि, 700 करोड़ आत्माएं हैं इसमें, और मैं इसकी आधार मूरत आत्मा हूँ, आधार में हूँ, जड़ हूँ। वृक्ष का बीज तो इम्पोर्टेंट होता है, बीज से पौधा निकलता है, लेकिन जितना जितना पौधा ऊपर की तरफ बढ़ता है उसकी जड़ें नीचे की तरफ बढ़ती हैं, और वो जड़ें मजबूती प्रदान करती हैं। ये सृष्टि की मैं आधार मूरत आत्मा हूँ, मैं इसका मुख्य तना हूँ, जो बाबा ने भी कहा है। सृष्टि के इतने धर्म वाले अलग अलग लोग हैं, सब धर्मों की आत्माओं को मेरे द्वारा सब शांति और शक्ति और ये सब खुराक मिल रही है। मैं आधार मूरत हूँ। एक परिवार का बड़ा कोई भी होता है, आधार होता है, उसे चिंता होती है ना कि परिवार की पालना करनी है, ये पैसे कमाने हैं, घर का ये सामान लाना है। अपने को आधार समझते हैं जो माता और पिता होते हैं, बच्चों के आधार मूरत। ऐसे ये सृष्टि जो है सारी आध्यात्मिक रीति से मेरे वंशज है, और मैं इनके आधार मूरत हूँ, और मुझे, मैं जितना तना जितना शक्तिवान होगा उसकी टारटारियां भी उतनी ही शक्तिशाली होंगी। इस तरह हम चित्र के सामने जैसे प्रदर्शनी में किसी को बताते हैं अपने को समझाएं, मुझे सतो प्रधान स्टेज है और मुझे ऊपर बढ़ता चले जा रही हूँ मैं आत्मा। मानो त्रिमूर्ति के सामने किसी दिन बैठे तो त्रिमूर्ति के सामने भी वैसा होना चाहिए, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति है, मैं भी त्रिमूर्ति हूँ, शिव बाबा का बच्चा, मैं भी ब्रह्मा, शुद्ध संकल्पों की रोज रचना करता हूँ, और शुद्ध संकल्प के आधार पर मैं भी सृष्टि की रचना करता हूँ। संकल्प के आधार पर वाणी और कर्म होंगे, जितने संकल्प शुद्ध होंगे उतना ही मेरी वाणी में भी मधुरता नम्रता मिठास, जो बाबा बोलता है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, वो रहेगा, और उसके साथ साथ नम्रता भी रहेगी। तो ये कर्म भी वैसे ही मेरे होंगे, शुद्ध कर्म होंगे। इसी तरह शंकर द्वारा विनाश कहते हैं ना, तो शंकर द्वारा विनाश का प्रतीक है कि मुझ मेरे अंदर जो पुरानी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, पुराने संस्कार हैं, उन सब का भी मुझे विनाश करते जाना है, निकालते जाना है। बर्तन में कोई कचड़ा भरा पड़ा है, आप अच्छी चीज जितना भी डालेंगे वो भी बेकार हो जाएगी, पहले उस कचड़े को निकाल के साफ करेंगे, धोएंगे। तो इसीलिए ये शरीर जो है पांच तत्वों का बना, तो इनके अंदर से भी मेरे जो कमी कमजोरियां शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु चतुर्भुज के द्वारा पालना, तो जो नए संस्कार मैं भर रहा हूं उनकी पालना करना, प्रतिदिन नित्य नए नए संकल्प करना, नए अच्छे मुख से मधुर वाणी, और कर्म भी दैवी कर्म, और जितना संग भी हमारा शुद्ध हो जाता है, अन्न भी शुद्ध हो जाता है, पूरा वायुमंडल, जब वृत्ति अंदर की शुद्ध हो जाती है, वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। वाइब्रेशन यानी हमारा ऑरा, जो किसी भी देवी देवताओं के या महान आत्माओं के चित्र देखो ना, तो उनके देखेंगे कि ऑरा बड़ा शक्तिशाली होता है, बस लाइट का ऑरा दिखाते हैं, वाइट या येलो जैसा, गोल्डन जैसा, तो वो ऑरा हमें आपको दिखता नहीं है, लेकिन हम सबके पीछे भी वो ऑरा है। और उसके लिए एक विशेष कैमरा बनाया था रशियन साइंटिस्ट ने, किरलियन नाम का साइंटिस्ट था, उसने कैमरा बनाया, किरलियन फोटोग्राफी उससे करते हैं। तो मुझे जब रशिया जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वहाँ बहन जी ने खास बुलाया था कि एक 15 दिन का वो ये पर्यावरण सप्ताह मना रहे थे, तो पर्यावरण सप्ताह में वो चाहते थे उसके संपर्क में, उस संबंध में कोई ऐसा अपना भाई बहन आए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता सके। और हम लोगों का इंसिडेंटली, मैं साइंटिस्ट इंजीनियर विंग में भी सेवा देता हूँ, तो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, तो उन्होंने हमें आमंत्रण दिया, मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और जो किरलियन फोटोग्राफी वाला वर्तमान में किरलियन साइंटिस्ट तो अब नहीं रहा, लेकिन उनकी इंस्टीट्यूट चलती है, उसको भी उन्होंने एक दिन खास बुलाया हुआ था, उसने भी हमारा ऑरा निकाला, फोटो लिए। और ऑरा का नहीं होता है सिर्फ उंगलियों का, नाक का, हाथ का, कान, हर शरीर के अंग का ऑरा होता है, थोड़ा लाइट जैसा, और उसकी रिकॉर्डिंग और उसकी वैल्यू आ जाती है, इंस्ट्रूमेंट पर हाथ रखो उंगली तो उंगली का ऑरा भी आ जाएगा, फोटो निकालेगा तो फोटो। तो सब निकाल के फिर वो गया, 3-4 दिन बाद सारा एनालिसिस करके भी वो आया, और उसने बताया कि मेरे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के, अलग अलग देशों के लोग, तो सब का मैं ऑरा निकालता हूँ, और सबके ऑरा निकालते हुए फिर मैं उसकी एनालिसिस करता हूँ। तो मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी होती है कि सबके ऑरा हम निकालते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वालों का ऑरा जितना अच्छा स्पष्ट होता है उतना किसी का नहीं होता। तो बाबा हमें जो राजयोग सिखा रहा है, विज्ञान और साइंटिस्ट भी उसकी बात को सपोर्ट करते हैं। थोड़े समय में तो पूरा, अभी तो विज्ञान भी मानने लगा है, मेडिकल साइंस भी पुनर्जन्म की बातों को मानने लगी है काफी हद तक, तो बहुत, ये तो विषय अपने में बहुत लंबा है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो कई चीजों का ऑरा तो हमारी लाइफ में हर चीज का बैलेंस रहे, एक तो ये देखते चलना है। और इससे क्या होगा कि जो बाबा चाहता है, आप बच्चे हमेशा श्रृंगारे हुए रहो। बच्चा भी छोटा बच्चा होता है, माता श्रृंगार करती है, नहलाती धुलाती है, फिर जाके वो खेलता है, मिट्टी विट्टी में गंदा हो जाता है, फिर माता उसके सफाई करके फिर सब वो करती है। ऐसे ही बाबा भी अमृत वेले से लेकर हमारी पूरी आत्मा की सफाई करता है। अमृत वेला योग, इतने सतो प्रधान समय में मुरली ज्ञान शुद्ध अन्न का बाबा ने बोला हुआ है। लेकिन जैसे ही अपने हम कार्य व्यवहार में जाते हैं ना, तो कार्य व्यवहार में दुनिया भर के लोगों से सामना करना पड़ता है, विभिन्न परिस्थितियां होती हैं, परीक्षाएं आती हैं माया की। हाँ, तो उसके कारण क्या होता है, जैसे बच्चा मैला हो जाता है, ऐसे हमारी आत्मा भी थोड़ी थोड़ी विकारों के प्रभाव में आते आते कलुषित हो जाती है। और रात तक तो, रात को तो तमो प्रधान, सुबह का सतो प्रधान समय, फिर सतो रजो, फिर लास्ट में तमो, तो वो तमो प्रधान समय तक, इसीलिए बाबा कहता है तमो प्रधान समय से फिर हमें सतो प्रधान में जाना है अमृत वेले, तो रात को बैठ के अपना चार्ट निकालो, अपने साथ देखो, वो जैसे अपने ऊपर ही ब्लेसिंग करना हुआ, अपने ऊपर ही जैसे अपने को आशीर्वाद करना हुआ। क्यों? अपने आशीर्वाद भगवान, यहाँ बाबा कोई दुनिया की तरह आशीर्वाद तो नहीं करता, लेकिन आशीर्वाद कराना भी सिखाता है। और बाबा यही चाहता है, ब्रह्मा बाबा के साथ हमें रहने का काफी मौका मिला। शुरू में 1962 में हम ज्ञान में आए और 69 तक जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तब तक बीच बीच में आते रहते थे। उस समय तो 63 से 67 तक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे आईआईटी में, उस टाइम की बात है ये, तब 60s की बात, 60 के दशक की बात, 63 से 67 तक वहाँ पढ़ाई करी और उसके बाद बाबा के पास गए और बस हमारे हाथ में लौकिक रीति से 3 जॉब थे। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करा हुआ था हमने, तो वहाँ पर ISM नाम सुना होगा आपने, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वो बाद में IIT उसे कहने लगे। तो उसके बाद बाबा ने बोला, बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें आसाम जाना है। मैंने कहा बाबा आसाम जाएंगे, वहाँ तो कोई सेंटर ही नहीं है, वहाँ कैसे हमारी पालना होगी, कैसे वो। तो बाबा ने कहा नहीं, अब इतने टाइम हो गया 62 से 60, वहाँ जाके बस इस ONGC में जाओ, इसमें ज्वाइन करो और बाबा तुम्हारे साथ, समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा जब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बस देखो बाबा ने भेजा और वहाँ निमित्त कार्य हम करते थे, लेकिन बुद्धिवानों की बुद्धि तो बाबा ही है। अब बाबा कई बार ये बोलता है ना, जब मैं देखता हूँ कि समझाने वाला उतना सक्षम नहीं है और समझने वाला कोई बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो मैं उन बच्चों में प्रवेश करके भी समझा देता हूँ कितनी बार। तो बाबा बोलता है ना, इस तरीके से कई बार हमने इस बात का तो अनुभव किया। और वहाँ थोड़े समय में ही जब देखते थे, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग उस वक्त, 21-22 साल की उम्र थी, और जब वहाँ पर पास किया और पहली पोस्टिंग ही ONGC में आसाम में हुई, तो वहाँ जाके बस बाबा ने जैसे लिखते थे बच्चे चित्र खोल के बैठ जाओ, मंदिर के पास जाके चित्र खोल के बैठो और वहाँ पर समझाओ, लोग चित्र के आगे आएंगे देखेंगे समझना चाहेंगे उन्हें समझाओ, बाकी काम बाबा करेगा। तो बस ऐसे ऐसे मोटे रीति से चित्र समझाते थे और वो लोग आते थे, बाकी का काम बाबा करेगा। माने कई ऐसी होते थे उसमें कन्याएं, छोटी छोटी 8-9 साल की कुछ माताएं, वो देखते देखते ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार करते थे। तो भक्ति मार्ग में तो ध्यान साक्षात्कार बहुत बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। अच्छे अच्छे संतों को और साधुओं को भी नहीं होते और ये ध्यान में चले जाते थे। तो उसका लाभ ये हुआ कि थोड़े समय में ही बहुत बड़ा मारवाड़ी ग्रुप आने लगा। उन्होंने हॉल बनाया हुआ था, उनके हॉल में क्लास शिफ्ट हो गई और वहां पर बाबा की क्लास और मुरली चलने लगी। तो ये होती है जब हम अपने ऊपर ब्लेसिंग करते हैं, अपनी स्व सेवा और विश्व सेवा दोनों का बैलेंस होता है, तो ये हमें ब्लेसिंग आशीर्वाद जैसे अपने आप ही मिलती चली जाती है। तो इस सब में क्या होता है, हमारी धारणाएं, तो एक दोहे के अंदर वो धारणाएं हम समझ सकते हैं। उसके अंदर बोल है, इसमें सब मन वचन कर्म सब आ गए। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बदल सको तो कुपथ बदलो, राह बदलना मत सीखो। बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। ये जैसे कि जनरल बात है हमारे जीवन की। चार और लाइन है इसमें, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। मिटा सको तो गर्व मिटाओ, और क्या मिटाना नहीं सीखो, स्नेह प्रेम मिटाना मत सीखो। और एक चीज और है इसमें कि कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो। और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। तो ये जीवन की कुछ बातें हैं जो हमें ब्लिसफुल लाइफ की तरफ ले जाती हैं। संक्षिप्त में हम क्या चाहते हैं जीवन में, सुख और शांति, पीस एंड हैप्पीनेस। और इनके लिए एक एक साइंटिफिक फार्मूला है, जैसे फार्मूला होता है ना, x=a/b, ऐसे। तो इस तरीके से इसका फार्मूला है, हैप्पीनेस का फार्मूला है क्या, अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। यानी खुशी का हम मापदंड क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट यानी प्राप्तियां, जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो जाती है चीज तो खुशी होती है। मानो मैंने कार चाही, कार मिल गई, खुशी होगी। मानो किसी ने लैपटॉप चाहा, लैपटॉप मिल गया, खुशी होगी। अचीवमेंट डिवाइडेड बाय नीचे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन माने हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। तो जितनी इच्छाएं ज्यादा होंगी उतनी हैप्पीनेस लेवल कम हो जाएगी। तो जीवन में अगर हम खुशी चाहते हैं तो अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं पर काबू रखना सीखे, और वो आता है योग बल से। क्योंकि इच्छा क्या है, मन के संकल्प है, ये हो मेरे पास, ये हो ये हो। और इच्छाएं जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हैप्पीनेस खुशी का लेवल कम हो जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है संसार में जिसकी सारी इच्छाएं कंप्लीट हो जाती हों, सब पूर्ण हो जाती हों। 10 इच्छाएं करेंगे, 1 इच्छा 2 इच्छा का पूर्ति होगी। तो इसीलिए इच्छाएं कम से कम रखो है, ये भी राजयोग सिखाता है अपने संकल्पों को कंट्रोल करना, तो हैप्पीनेस हमारा लेवल आज ज्यादा होगा। इसी तरह शांति, क्योंकि सुख और शांति दो चीज हैं जो हर मनुष्य जीवन में चाहता है। शांति का भी एक फार्मूला है, डिजायर से कनेक्टेड है, नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स, यानी कि जो इच्छाएं हमने की हैं, जितनी इच्छाएं की पूर्ति हो जाती है डिवाइडेड बाय अनफुलफिल्ड डिजायर, बिना मतलब अपूर्त इच्छाएं, जो इच्छाएं की पूर्ति नहीं हुई, जितनी ज्यादा हमारी इच्छा करी और पूर्ति हो गई तो बस खुश रहेंगे, मानसिक शांति रहेगी। लेकिन अगर इच्छाएं अनफुलफिल्ड है वो, तो वो हमें बार 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 अशांत करती रहेगी। ये नहीं हुआ, हमने सोचा मेरा प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन नहीं हुआ, वो अनफुलफिल्ड डिजायर, तो उतना पीस ऑफ माइंड कम होगी। तो इसीलिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना ये राजयोग सिखाता है, और जितना राजयोग हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना उतना हमारी लाइफ में ब्लेसिंग और ब्लिसफुल ये चीजें आती जाएंगी। और क्या आजकल मुख्य बात है, बाबा भी कहता है व्यर्थ जो है, बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प है। व्यर्थ संकल्प को कैसे करें दूर? हम सब के अंदर ना वो है कि निगेटिव बातें भी हैं, पुराने संकल्प अंदर हैं, तो व्यर्थ संकल्पों को जीतने के लिए एक शिल्पकार था, वो मूर्ति बहुत अच्छी बनाता था। तो लोगों ने पूछा, अरे भाई आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हो? वो कहता है, मैं तो मूर्ति बनाता नहीं, मैं तो पत्थर लिया, उसके चारों तरफ जितना भी वेस्ट है उसे निकाल देता हूं, मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है। समझे ना? तो जितना जितना हमारे चारों तरफ व्यर्थ संकल्प बोल कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है वो निकालते जाएंगे, तो हमारे अंदर से वो संपूर्णता की मूर्ति प्रत्यक्ष होती जाएगी। और ये सब हमारे संकल्पों पर आधारित है, मन पर। एक साधु आया राजा के पास छोटा सा भिक्षा पात्र लेके, और उसने कहा, राजन मुझे भिक्षा दे दो। तो राजा ने कहा, ठीक है। मंत्री को बोला, जाओ राजकोष में से जाओ, जितने सोना चांदी अशर्फियां हैं वो भर के ले आओ, इसके पात्र में डाल दो। मंत्री गया, सब भर के लाया, पात्र में डाल दिया, लेकिन पात्र भरा ही नहीं, देखने में तो छोटा सा पात्र था। फिर मंत्री दोबारा गया, तीसरी बार गया, चौथी बार, भर भर के लाता था लेकिन पात्र भरता ही नहीं था। तो राजा को थोड़ा क्लिक हुआ कि इसमें जरूर कुछ राज है, इतनी बार मंत्री भर भर के लाया ये भरा नहीं। तो उसने उससे पूछा, महाराज इसमें क्या बात है, ये भरता क्यों नहीं है, देखने में तो छोटा है। तो उसने बताया, महाराज ये जो पात्र है ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और मनुष्य के खोपड़ी के अंदर यहाँ मन बुद्धि वगैरह होता है, तो उसके अंदर बहुत इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और सब तो फुलफिल हो नहीं सकती, पूर्ण नहीं हो सकती, तो इसमें जितना भी आप डालोगे ये पात्र कभी नहीं भरेगा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है, और खोपड़ी में तो बहुत सारी अतृप्त इच्छाएं होती हैं। तो इसीलिए हमें मन को अपना देखते चलना है, किस प्रकार से हम वो करें। तो बाबा भी इसीलिए राजयोग में मुख्य यही बात बताते हैं कि मन को अपने सही दिशा निर्देश। इसीलिए बहनें कमेंट्री करती हैं, योग शिविर करते हैं ना, तो बहनें सही मार्ग प्रदर्शना के लिए पहले कमेंट्री करती हैं, मैं आत्मा हूँ, परमधाम की निवासी हूँ, आदि आदि। और आप भी मन में उन्हीं बातों को सिमरण करते जाओ, तो जितना जितना वो सिमरण होता चला जाता है उतना उतना व्यक्ति आगे। तो बाबा भी आते थे, मैं ब्रह्मा बाबा की बात बताता हूँ, फूल लेकर के आते थे। कई बार बाबा कहते देखो ये तो जड़ फूल है और आप बच्चे तो चेतन फूल हो, और चेतन फूल में खुशबू भी है रंग रूप भी है, और ये फूल तो मुरझा जाएगा दो चार दिन में, आप बच्चे तो 21 जन्मों तक सदा खिले रहते हो। और बाबा बच्चों को ये चढ़ाया करता था, और इसी को ही किसी ने कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। क्योंकि जीवन में तो हार और जीत दोनों ही होंगे, तो जब हार और जीत दोनों होंगे तो हार में हम दुखी हो जाए और गमगीन हो जाए, नहीं, हार कर भी जब हार हो हमारी दिखे उस समय समझे हम मैं भगवान के गले का हार हूं, वो हार हूं भगवान के, तो हार से हम मुस्कुराए ना। और अंत में मैं बाबा का एक 18 जनवरी की बात साकार बाबा की सुना के समाप्त करता हूं कि मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिस दिन बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो एक दिन पहले मैं यहाँ आ गया था 17 जनवरी को, तो 17 और 18 जनवरी को मुझे बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो कर्मातीत अवस्था तो हम सब लोगों को भी प्राप्त करनी है जीवन में, तो मैंने एक बात जो देखी वो मुख्य सबसे पहली यही देखी कि बाबा के कोई भी काम पेंडिंग नहीं था, बस जितने काम बचे हुए थे बाबा ने फटाफट 2 दिन में पूरे करे, सारे पत्र लिखे, म्यूजियम का मकान लेना था वो आदि आदि, जिससे अंत समय में कोई चीज याद ना आए बाबा को, न व्यक्ति वस्तु वैभव कोई भी चीज। तो अंत में जब कोई याद नहीं होगा, बाबा की याद होगी तो शरीर उसमें छोड़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो एक बाबा का ये देखा, दूसरा देखा कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, क्योंकि बाबा में कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी वो आत्मा, तो वो बाबा ने देखा कि जब कर्मातीत अवस्था की आत्मा, तो बाबा जिसकी तरफ भी देखता था तुरंत उसके मन के भाव को पढ़ लेता था। हमारे साथ ही हुआ 4-6 बार, 2 दिनों में हम बाबा के सम्मुख गए, हम ये पूछेंगे ये बात पूछेंगे, बाबा के पास गए, बाबा ने दृष्टि दी, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसे मुझे, तो प्रश्न भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और समाधान भी मिल गया। तो ऐसा दिन में 17 और 18 जनवरी को 5-6 बार हुआ। तो ये दूसरी सिम्टम है कर्मातीत अवस्था का, हमारा मन इतना शुद्ध हो जाएगा, कोई व्यर्थ नहीं होगा, तो हम दूसरे के मनोभावों को भी पढ़ सकेंगे। तीसरी बात, हम शरीर छोड़ेंगे अपनी इच्छा से, इच्छा मृत्यु का जो वरदान है ना, वो केवल वो नहीं था एक दो को प्राप्त, बट ये ब्रह्मा बाबा का था, ये हमने प्रत्यक्ष देखा। बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई थी 18 जनवरी को, शाम को बाबा ने कहा आज बाबा जल्दी मुरली चलाएगा, क्योंकि सुबह मुरली नहीं चलाई थी, सब बच्चे भोजन करके आए, क्यों, क्योंकि बाबा को मालूम था बाबा मुरली चला के जाएगा और शरीर छोड़ के चला जाएगा सुख श्रम वतन में, तो इसीलिए बाबा ने सब, उसके बाद तो कोई खाना नहीं खाता, भोजन पका हुआ भी बेकार जाता, तो सब भोजन करके आ गए और 8 बजे से बाबा ने मुरली चलाई, रोज नहीं तो वो क्लास 9 बजे से होती थी, तो 7:45 बजे से मुरली चलाई और बाबा ने सब बच्चों को ऐसी इतनी शक्ति भरी, किसी को भी ये आभास ही नहीं हुआ, एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न एक बार भी कफ साफ करने की जरूरत पड़ी। और जो ये प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर शरीर के कर्म भोगों के ऊपर योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसी तरीके से हम सब लोगों को भी अंतिम समय तक अपने योग बल के द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेनी है। ये हमारी अंतिम कर्मातीत स्टेज का होगी। और चौथी बात, बाबा ने 18 जनवरी की अर्ली नाइट को शरीर छोड़ा, लेकिन बाबा का शरीर 18 रात भर रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। न बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया, न कोई लोशन लगाया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, न कोई काला पड़ा, न उसमें दुर्गंध आई, और वैसा ही चमकता लगता था जैसे बाबा निंद्रा कर रहे हैं, और हमेशा की भांति जैसे बाबा मिलते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे और हम बाबा की बाहों में चले जाते थे। तो लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने आत्मा की पवित्रता के साथ साथ शरीर के इन तत्वों को, 5 तत्व हैं, उनको भी इतना योगदान दिया, वो भी पवित्र बन गए थे। क्योंकि जब तक अगर शरीर पूरा पवित्र नहीं बना और आत्मा पवित्र बन गई, तो अपवित्र शरीर में तो आत्मा नहीं रहेगी। तो हमें दोनों को पवित्र बनाना है, ये आत्मा को भी और शरीर को भी। और ये बाबा ने फर्स्ट मीटिंग में ही हमें बोल दिया था। हमारा लौकिक नाम तो जब बाबा से मिले, बाबा ने पूछा क्या नाम है बच्चे, तो हमने बताया श्री, और क्या सर नेम है सिंगल, तो बाबा ने कहा श्री। अरे बाबा इतना जॉली स्वभाव का था, हर एक को ये लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। तो बाबा बस, बाबा ने कहा श्री तो अभी बाबा भी अपने आगे नहीं लगा सकता, तुमने कैसे लगा लिया श्री नाम। तो हमने कहा कि भाई देखते रहे, हम तो उस बात को समझे नहीं। तो बाबा ने कहा अब से तुम्हें श्री जैसा बनना है। श्री माने श्रेष्ठ, यानी जिसकी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हों, श्री जैसा बनना है। और अब से बाबा तुम्हें नाम मोहन देते। तो बाबा ने नाम भी हमारा चेंज कर दिया। तो आप सबका भी नाम बाबा ने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। और बाबा के साथ बाबा ने कहा ना, ब्रह्मचारी तो बन गए, अब आप यहाँ पर आए हो ब्रह्माचारी बनने के लिए, ब्रह्मा बाबा के फुटस्टेप पर रखने के लिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ हम सब यहाँ से जाएं तो ये संकल्प लेके ही जाएं कि मुझे अपनी आत्मा और शरीर को अंत समय तक संपूर्ण पवित्र बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है, सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, है।